हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बताओ धृति, इस बंद कमरे में अकेले रात के इस वक्त पति पत्नी के बीच क्या होने की संभावना होती है, जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारा चेहरा सुर्ख रंग में रंग गया है और सीने में मौजूद दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा है कि उसकी आवाज़ मुझे यहाँ तक साफ साफ सुनाई दे रही है। अर्णव की सर्द आवाज़ धृति के कानों से टकराई और उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे नहीं पता, उसके थरथराते लबों से बिखरी हुई आवाज़ बाहर आई और झुकती उठती पलकों ने उसके गुलाबी रुखसारों को चूम लिया। अर्णव के लब दिलकशी से मुस्कुरा उठे। जानती तो तुम हो, तभी इतना घबरा रही हो, पर साथ में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अभी हमारे बीच वैसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रही हो। क्यों नहीं हो सकता? धृति की पलकें उठी और बड़ी बड़ी कत्थई आंखें अर्णव की स्याह आंखों से जा टकराईं। लबों पर ठहरा सवाल उसके मन को व्याकुल कर गया। अगले ही पल हड़बड़ाते हुए उसने अपनी निगाहें झुका ली और निचले लब को दांतों तले दबा लिया। अनजाने में अपने मुंह से निकले सवाल के कारण वो घबरा गई थी। अर्णव, जिसे धृति से इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो स्तब्ध सा उसे देखता ही रह गया। धृति ने कसम साते हुए उससे दूर हटना चाहा, तब कहीं जाकर अर्णव अपने सेंसेस में लौटा। धृति की कमर पर अपनी बाँह लपेटते हुए उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। धृति उसके सीने से आ टकराई। अपनी आँखों और लबों को कसके भींचते हुए उसने अर्णव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी शर्ट पर अपनी मुट्ठियों को कस दिया। हमारे बीच अभी वैसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, और मैं फिर से बेताबी या बेसब्री दिखाकर तुम्हारी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहता। अर्णव की ठहरी हुई गंभीर आवाज़ धृति के कानों से टकराई और वो उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखने लगी। क्या हुआ, अब तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? धृति को यूं एकटक खुद को देखता पाकर अर्णव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, जिस पर धृति ने इनकार में सर हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, बस सोच रही हूँ कि आप वही शख्स हैं जो कभी सिर्फ मुझे तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, और आज मुझे होने वाली ज़रा सी तकलीफ पर आप मुझसे ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। एक वो वक्त था जब आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाले थे, पर पता नहीं क्यों आप पीछे हट गए, और एक आज का वक्त है जब मेरी मर्ज़ी के बाद भी आप मेरे करीब नहीं आना चाहते। तब आपकी बेइंतहा नफ़रत मेरे हिस्से आया करती थी, और आज आप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतना चाहते हैं मुझे कि मुझे तकलीफ़ ना हो, इसलिए अपनी सभी हसरतें, अपने अरमान, सब कुछ अपने दिल में छुपाकर भी अपने और मेरे दरमियान दूरी बनाकर रखते हैं। उस वक्त मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी मुझे आपका ये रूप भी देखना नसीब होगा, या आप मुझसे कभी इतनी मोहब्बत भी करेंगे, और अब जब पीछे पलट कर देखती हूँ तो लगता है जैसे वो एक बुरा ख्वाब था, जैसे वो आपका कोई प्रतिरूप था, आप थे ही नहीं। धृति के इस जवाब ने अर्णव को लाजवाब कर दिया था। उसके पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को। धृति पल भर ठहरी, फिर अपनी हथेली को उसके गाल पर रखते हुए उसने आगे कहना शुरू किया। अर्णव जी, मैं उस बुरे ख्वाब को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आप भी सब कुछ भूल जाइए। मैं चाहती हूँ कि अब हम भी एक नॉर्मल पति पत्नी जैसे रहें, और अगर आप यूं ही मेरे करीब आने से कतराते रहेंगे तो मैं कभी वो सब भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकूंगी, कभी आपके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकूंगी। मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं, आप भी अपने मन से इस डर और गिल्ट को निकाल दीजिए। दोबारा शादी कर रहे हैं ना हम, तो एक नई शुरुआत करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आम कपल करते हैं। अगर तुम यही चाहती हो तो यही होगा। अर्णव का जवाब सुनकर धृति मुस्कुरा उठी और उसके सीने से लग गई। अर्णव ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके सर को चूम लिया। कह तो दिया था उसने, पर यह आसान उसके लिए भी नहीं था। मन में एक डर बैठ गया था जो उसे धृति की ओर बढ़ने से रोक रहा था। जाने आगे क्या होने वाला था, पर अब वादा कर दिया था तो अपने डर पर काबू पाकर उसे निभाना तो था ही। फिर धृति उसके साथ थी, इससे ज्यादा क्या चाहिए था उसे। कबीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? माधुरी, जो खुशी खुशी कबीर के बुलाने पर टेरेस पर चली आई थी, अब चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसके सामने खड़ी भौं उछालते हुए उसे देख रही थी। कबीर उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, मैंने सोचा अपनी होने वाली बीवी के साथ कुछ वक्त अकेले तन्हाई में गुजारा जाए। अच्छा, ऐसी बात है? अब भी माधुरी ने गंभीर भाव चेहरे पर लाते हुए सवाल किया था, जिस पर कबीर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। कबीर के कदम माधुरी के ठीक सामने आकर रुके और उसकी कमर पर अपनी एक बाँह लपेटते हुए उसे खुद से सटा लिया। माधुरी ने इठलाते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रखे और एड़ी उचकाते हुए अपनी बाहों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया। क्या बात है मिस्टर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। माधुरी का सवाल सुनकर कबीर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। खुश तो मैं वाकई में बहुत हूँ, आखिर मेरे सालों के इंतज़ार का फल जो मिलने जा रहा है मुझे।
कब से मुझे इस पल का इंतजार था और अब जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ है। ये पल मेरे नसीब में आया है। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है और आज से ठीक 14 दिन बाद तुम मेरी वाइफ बनकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली हो। उसके बाद मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुमने बीते 3 सालों में जितना तड़पाया है ना मुझे, बस एक बार शादी जो हो जाने दो, फिर सबका गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। माधुरी, जो शुरुआत में उसकी बात सुनकर और उसकी बेताबी देखकर मुस्कुराई जा रही थी, उसकी आखिरी की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए और भौहें तन गई। अच्छा, मतलब शादी करके तुम मुझसे बदला लेने वाले हो बीते 3 सालों का? उसके गुस्से से फूली नाक देखकर कबीर की मुस्कान गहरी गई और उसने तुरंत ही उसकी बात पर एतराज़ जताते हुए बेहद प्यार से उसे देखा। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत में बदला नहीं लिया जाता, बल्कि दिलबर की खताओं की प्यारी प्यारी सजा दी जाती है, जैसे मैं देने वाला हूँ तुम्हें। अच्छा जी, जब इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि तुम्हारे मोहब्बत की अदालत में मुझे क्या सजा सुनाई जाने वाली है? माधुरी ने भौं उठाते हुए सवाल किया और अपने गालों को नाराजगी से फुला दिया। कबीर ने उसका सवाल सुनकर पल भर सोचा, फिर प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोला, बीते 3 सालों में मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे नखरे, तुम्हारी प्यारी प्यारी अदाएं, सबको बहुत मिस किया था मैंने। तरस गया था मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। उन अनचाही दूरियों ने बहुत सताया है मुझे। इसलिए जब हमारी शादी होगी और तुम मेरे पास होगी, तो मैं तुम्हें सबसे चुरा कर एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। पूरे 1 महीने का हनीमून प्लान किया है मैंने और वो पूरा 1 महीना तुम मेरे पास रहोगी। तुम्हारा सारा वक्त, अटेंशन सिर्फ मुझे मिलेगा और मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बीते 3 सालों की सारी कमी तुमसे पूरी करवाऊंगा और 3 साल के बदले का प्यार भी वसूलूंगा। जैसे तुमने मुझे सताया और तड़पाया है, वैसे मैं भी खूब तंग करूंगा तुम्हें। तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम्हारे नाज नखरे उठाऊंगा। बताओ, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी सजा? बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ सारी बात कहने और अपनी पूरी प्लानिंग उसे बताने के बाद कबीर ने उससे सवाल किया। माधुरी, जो लबों पर मंद मुस्कान सजाए बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी, उसने झट से अपनी मुस्कान को छुपाया और नाक से कोड़ते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। बहुत बुरी। अच्छा, तो सजा को और इंटेंस किया जाए? कबीर ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा और उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। शायद उसका नाटक समझ गया था और अब उसे टीज कर रहा था। माधुरी ने तुरंत ही अपना सर पीछे किया और उसे खुद से दूर धकेलने लगी।
बिल्कुल नहीं, और दूर हटो वरना मार खाओगे। माधुरी ने सख्ती दिखाई और कबीर ने उदास चेहरा बना लिया। मारी दो यार तुम, एक बार में सारा किस्सा ही खत्म करो। यूं बार बार अपनी बेरुखी से मारने से तो अच्छा है कि एक ही बार में मार दो। अभी कबीर किसी लुटे पिटे आशिक जैसा लग रहा था, जिसे उसकी दिलरुबा ने खूब सताया हुआ था। उसकी नौटंकी देखकर माधुरी ने मुंह टेढ़ा किया और चिढ़ते हुए बोली, टू बी कंटिन्यूड।